धमर सिटी में और बेदा का जो प्रोविंस है उसके अंदर किया है। वैसे तो यूके की गवर्नमेंट ने रॉयटर्स की इस रिपोर्ट को बिल्कुल डिनाई किया, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जाहिर है कि स्ट्राइक्स वहां पे जो हुई हैं वो ना सिर्फ इन इलाकों में हुई हैं बल्कि जो मिलिट्री के बेसिस थे हुतीस के उनके ऊपर भी हुए हैं। अकॉर्डिंग टू हुती मीडिया 7 स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं एयरपोर्ट और कथीब के एरिया में भी, और खासतौर पे कथीब में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हुतीस का यहां पे एक मिलिट्री बेस जो है वो कंट्रोल करते हैं। हुतीस ने कहा जी कि उन्होंने भी एक यूएस ड्रोन जो है जो कि यमन के ऊपर फ्लाई कर रहा था उसको गिराया था इन रिस्पांस टू अटैक बाय जो है इनके ये जो कर रहे हैं यूएस और अलेजली यूके भी, जिनको जिसके कोई यूके ने डिनाई किया है। और यूएस जो था उसने वो कहता है कि हमने इसलिए इनके ऊपर अटैक किए क्योंकि हुतीज ने इंटरनेशनल शिपिंग जो है नियर यमन उसके ऊपर अटैक्स किए थे। ये अटैक्स जो है पिछले नवंबर से ही जारी हैं इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियंस, और हुतीज जो हैं अक्सर ये जो शिप्स हैं इनके इसराइली रिलेटेड उनके ऊपर जो है काफी वो अटैक्स वगैरह करते हैं। तो बहरहाल जनाब फैलती जा रही है वॉर तो मिडल ईस्ट में, लेकिन अमरीका जो है हमारा जो साडा मामा जड़ा है वो कह रहे हैं कि जी नहीं सब ठीक है। अच्छा जनाब अगर आप उमरा पे जाना चाहते हैं तो अल हबीब ट्रेवल्स जो है उनको आप कांटेक्ट कर लें, आपको बड़े जबरदस्त उमरा के पैकेजेस देंगे। इनका नंबर है 9055547786। डिटेल्स के लिए आप इनको यहां पे कॉल कर लें। डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा नाजिया डॉक्टर नाजिया रहमान होती हैं, जबरदस्त डॉक्टर हैं। शी इज लोकेटेड एट 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट यूनिटी 104 ब्रैम्पटन। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनको कॉल कर लें एट 9058721100। एंड ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट, इनके भी 2 रेस्टोरेंट हैं। प्रोफेसर चिट्ठा साहब को मिसेस आगा में अगर आपको कॉल करना है तो आप नंबर मिलाएं 1052323003, ओकविल में 9052262294। एंड जनाब अगर आपको गवर्नमेंट का ग्रांट चाहिए, अगर आपके पास 12 साल और उससे कम के बच्चे हैं तो शावेज को फोन करें, ए कंसल्टेंट इंक में है, इनका नंबर है 6477690241। ठीक है जी, इनको कॉल करें। अच्छा जनाब आज पीटीआई का जलसा था तो उसकी हम अभी आपको डिटेल्स देते हैं, एक छोटा सा हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
हाँ जी, पीटीआई का आज जलसा था, आपको हमने कल ही से बताया था कि ये इनके लीडर्स ने पीटीआई के लीडर्स ने कहा था कि हम डी चौक पे जाएंगे। बहरहाल जी पुलिस ने वहां पे काफी टीयर गैस वगैरह और शेलिंग की जो है जब ये एंटर होने की कोशिश कर रहे थे फैजाबाद और शमसाबाद से। केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर, उनका जो कॉन्वॉय जो था उसको भी हिट किया गया बुरहान एक्सचेंज के इंटरचेंज के पास। पुलिस ने इसके अलावा अरेस्ट किया आज इमरान खान साहब की बहनें जो हैं अलीमा खान, नौरीन खान और उज्मा खान को इस्लामाबाद में। गंडापुर साहब ने कहा जी कि पुलिस ने हमारे ऊपर फायरिंग की और ये पीसफुल पॉलिटिकल वर्कर्स थे जो पीसफुल जो है प्रोटेस्ट निकाल रहे थे। पीसफुल प्रोटेस्ट निकालना कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, लेकिन हमारे बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं इसके अंदर जो पुलिस की फायरिंग और शेलिंग हुई है उसमें वो जख्मी हुए हैं। बहरहाल इनको नियर बाय हॉस्पिटल जो है उसमें शिफ्ट किया गया है। इस्लामाबाद IGP जो हैं उसने कहा जी 30 लोगों को हमने अरेस्ट किया फॉर वायलेटिंग सेक्शन 144, और कई देर तक कई घंटों तक जो सेलुलर सर्विसेज और इंटरनेट था वो सस्पेंडेड रहा, उसके बाद वो पार्शली और फिर हौले हौले बाकी जगहों पे भी रिस्टोर किया पिंडी और इस्लामाबाद में। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने कहा कि पीटीआई के सपोर्टर्स जो है इन्वेड करना चाहते हैं इस्लामाबाद को। डी चौक पे जर्नलिस्टों से बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि हर किसी का राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन पीटीआई के एक्टिविस्ट जो थे अपने साथ वेपन्स लेकर आए थे और ये प्रॉपर्टी को डैमेज करना चाहते थे जिसकी कि हम इजाजत नहीं दे सकते हैं, और ये हर वक्त प्रोटेस्ट और रैलीज करते हैं। अडियाला जेल जो था आज पूरे का पूरा कंटेनर से ब्लॉक किया गया था ताकि कोई भी इमरान खान का चाहने वाला उस तरफ ना जाए, और गवर्नमेंट ने यह भी इंश्योर किया था कि ज्यादा डिप्लॉयमेंट की जाए पुलिस की, रेंजर्स की, FC पर्सनल की डी चौक पे। और इसके ऊपर जो है अब एक पिटीशन डाली गई है लाहौर हाईकोर्ट में एक सिटीजन से, उन्होंने कहा जी कि पुलिस ने ना हक जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर टीयर गैस फेंका और रबर बुलेट्स मारे जो कि ठीक नहीं है। पंजाब IGP प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है पंजाब की इन दोनों को जो है रेस्पॉन्डेंट्स बनाया गया है इस प्ली के अंदर। तो बहरहाल जनाब काफी हंगामा रहा। पंजाब की मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन जो है आजमा बुखारी साहिबा, उन्होंने कहा जी कि पीटीआई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई भी लेना देना सियासत के साथ नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। एक इंटरव्यू टीवी पे दे रही थी जिसमें उन्होंने कहा जी मैंने सुना है कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो प्रेशर कर रहे थे, और उन्होंने उसमें कहा कि हम पीटीआई के एक्टिविस्ट को इस्लामाबाद के अंदर एंटर नहीं होने देंगे और पीटीआई जो है इस मुल्क के अंदर बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं चाहती है। जीशान दिखा दें जरा अजमा बुखारी की तस्वीर, ग्लासेस पहनती हैं। हाँ जी, तो जो है वो कहने लगे जी कि ये जो पीटीआई है इसका इससे देखा नहीं जा रहा कि मुल्क प्रोग्रेस भी कर रहा है और इन्फ्लेशन जो है वो भी नीचे है और ये चैन से बैठते नहीं है, ये हर वक्त जो है ये हुल्लड़बाजी मचाए रखते हैं। और उन्होंने ब्लेम किया पीटीआई को ऑफ यूजिंग टीयर गैस, यानी कि उन्होंने उल्टा पीटीआई को कहा कि इन्होंने टीयर गैस जो है यूज किया, पुलिस ने नहीं की है, पुलिस के ऊपर इन्होंने की है। और उन्होंने कहा कि अगर लास्ट टाइम भी इनको ना रोका जाता तो ये जो कह रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, पीसफुल नहीं था और ये मुल्क के अंदर एनआरकी फैलाना चाहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो केपी की गवर्नमेंट है वहां पे जो लोग हैं उनको पूछना चाहिए अपनी गवर्नमेंट से कि वहां पे क्या काम किया जा रहा है, किस तरह से जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको वेंडलाइज किया जा रहा है, तो आपको हम पंजाब में ये सब करने की इजाजत नहीं देंगे। अच्छा जनाब, जो सिंध हाई कोर्ट है उसमें जो है जो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं उनकी जो वाइफ है समीना और उनके बेटे जो है अवाब, उन्होंने अब डाला है एक प्ली डाली है और उन्होंने कहा जी कि अलवी डेंटल जो कि लोकेटेड है एट प्लॉट नंबर 23B कराची सिंधी मुस्लिम कॉरपोरेशन हाउसिंग सोसाइटी में, उसको SBCA ने सील कर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि ये कमर्शियल एक्टिविटी रेजिडेंशियल एरिया में चला रहे थे शराए फैसल में, तो ये तो बड़े अरसे से यहां पे चला रहे हैं, तो अब ये इनको कैसे याद आया कि ये ऐसे है। अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर्स लॉयर बैरिस्टर अली ताहिर, उन्होंने कहा जी कि ये क्लिनिक है ये पॉलिटिकल रिवेंज के तौर पे सील किया गया है और अलवी साहब को कॉन्स्टेंटली हरास किया जा रहा है पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर, अदरवाइज तो ये बड़े अरसे से चल रहा था क्लिनिक, आज तक क्यों नहीं उसको शटडाउन किया, अब क्यों किया जा रहा है। बात तो उन्होंने वैसे ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं जनाब, उनकी मुलाकातें हुई हैं बीबी जरदारी और जमात इस्लामी के डेलीगेशन लेड बाय उनके जो अमीर हैं आमिर हाफिज नईमुर रहमान साहब पीएम हाउस के अंदर, और इसमें सारों ने गाजा के साथ बड़ी सॉलिडेरिटी दिखाई है। और उन्होंने कहा जी कि हम अक्टूबर 7 को जो है ऑब्जर्व करेंगे डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन और हम जो ये ओप्रेस्ड हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और गाजा के जो इनोसेंट मुसलमान हैं उनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जिसको होस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब इस मुद्दे के ऊपर। एंड आज की जो सबसे बड़ी दूसरी न्यूज थी, एक तो हम आपको सुना चुके हैं रशिया एंड तालिबान की, और दूसरी आज की जो बड़ी न्यूज अगर आप देखेंगे हर जगह ये ट्रेंड में, एंड दिस इज एक्चुअली अ बिग 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 ब्रेकिंग न्यूज, आफ्टर 10 ईयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एनी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर विल विजिट पाकिस्तान। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब SCO की मीटिंग के लिए जो समिट जो इस महीने में हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान आएंगे। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने ये डिटेल्स देते हुए कहा कि ये जो SCO की मीटिंग पाकिस्तान में अक्टूबर 15-16 को हो रही है उसके लिए एस जयशंकर साहब इस्लामाबाद लेकर चले जाएंगे, लेकिन उसके बीच में वो पाकिस्तानी लीडर्स के साथ बातचीत करेंगे या नहीं उसकी कोई डिटेल्स उन्होंने नहीं दी है। उन्होंने कहा जी कि जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तानी लीडर्स के साथ मिले, वो सिर्फ समिट अभी करके आ सकते हैं। आपको बताइए कि पाकिस्तान के बीच में जो है वो काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा है, इंडिया हर वक्त पाकिस्तान को कहता है कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है इसको रोके। जसवाल साहब ने कहा कि यही मुद्दा रहेगा जयशंकर साहब का SCO की मीटिंग के अंदर। इसके अलावा जयशंकर साहब ने जरूर कहा था कि हमको बैठ के बात करने की जरूरत है सारे मसलों की इंक्लूडिंग कश्मीर, लेकिन जब तक ये अच्छे नेबर्स नहीं बनेंगे और ये टेररिज्म चलता रहेगा हम इनके साथ बात नहीं कर सकते हैं। लास्ट हाई लेवल विजिट बिटवीन द टू कंट्रीज जो हुआ था वो मई 2023 में हुआ था जब बीबी जरदारी उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो थे SCO की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अटेंड करने के लिए गोवा गए थे। हेड ऑफ असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स फारूक अब्दुल्ला साहब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड, उन्होंने कहा है जी कि वो जीतेंगे और उन्होंने कहा है जी कि ये र्यूमर्स जो हैं ये गलत तरीके से फैलाए जा रहे हैं कि हमारी बातचीत बीजेपी के साथ हो रही है, बीजेपी वैली के अंदर बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। इसके अलावा पार्टी की प्रेस रिलीज जो आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की उसने भी कहा है कि ये सारे एक्यूजेशन बेसलेस हैं और हम इसको कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं। दे आर अनफाउंडेड र्यूमर्स ऑफ बैक चैनल टॉक्स विद एनी पार्टी आउटसाइड इंडिया ब्लॉक हमारी कोई भी नहीं हो रही है। वो जो पार्टीज हैं वो उनको नजर आ रहा है कि उनका डिफीट होएगा इस इलेक्शन में, तो ये इसलिए ये बेसलेस एक्यूजेशंस हमारे लिए फैला रहे हैं। तो हम लोगों को कहते हैं जम्मू और कश्मीर के कि इन फॉल्स क्लेम्स को बिल्कुल आप डिसरिगार्ड करें और जो है ये र्यूमर मॉन्गरिंग जो है इससे दूर रहें। ये बातें सारी उस वक्त आई जिस वक्त जुनेद मट्टू फॉर्मर श्रीनगर के जो मेयर हैं उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला जो है वो बीजेपी के साथ साउथ कश्मीर के का जो रिजॉर्ट है पहलगाम में उसके अंदर जो है बातचीत कर रहा है और उस सिलसिले में इनकी हो सकती है। लेकिन हुआ क्या है कि जो मोदी जी जो हैं वो भी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब भी उन्होंने कॉन्स्टेंटली ब्लेम किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, ये जो तीन फैमिलीज वो करते रहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के तमाम मामलात इन्हीं की वजह से खराब है। तो इसलिए अब किसी भी पार्टी का मूड नहीं है बीजेपी के साथ अलायंस बनाने का जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन के बाद। बिफोर 2014 लेकिन जब जनरल असेंबली के इलेक्शन हुए थे जम्मू और कश्मीर में, तो पीडीपी जो थी उसने कहा था कि हम जनाब बीजेपी को वैली से दूर रखेंगे, लेकिन उसके बाद पीडीपी के जो फाउंडर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उन्होंने बीजेपी के साथ ही कोलिशन गवर्नमेंट बना ली थी और फिर उसको जस्टिफाई इस तरह से किया था कि ये अलायंस जो है इट इज फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसलिए लोग अभी भी कह रहे हैं कि पता नहीं फारूक अब्दुल्ला सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। और जनाब हरियाणा के अंदर अब तो बिल्कुल रुक गई है कैंपेन्स, लेकिन मोदी जी और कांग्रेस के जो लीडर हैं मल्लिक अर्जुन खड़गे उनके बीच में बड़ी जो है तन गई है। मोदी जी जो है उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है लोगों को खुश करना ताकि उनसे वोट लिए जा सकें, और ये लोग जो कहते हैं कि ये इंडिया से बड़ा प्यार करते हैं ये इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं, हम इंडिया को यूनाइटेड रखे हुए हैं, हम आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ये एक एड्रेस कर रहे थे जान आशीर्वाद रैली को साउथ हरियाणा के पलवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उन्होंने कहा जी महात्मा गांधी जो थे उन्होंने ट्रूथ के साथ एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन कांग्रेस जो है वो झूठ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है और क्लोज डोर मीटिंग्स में ये हमारे बीजेपी के सपोर्टर्स को डिवाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इनको छोड़ के कांग्रेस में नहीं जा रहे क्योंकि वो देशभक्त हैं, यानी कि दे आर पेट्रियाटिक। और वो कहते हैं जी कि इनका काम ही है कि ये फॉल्स प्रोमिसेस को फैलाते हैं। बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो हार्डवर्क करने पे बिलीव करती है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसके ऊपर जनाब मल्लिक अर्जुन खड़गे साहब जो हैं वो भड़क गए, उन्होंने वोटर्स को कहा हरियाणा में कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट को निकालो यहां से, और जो है ये क्योंकि फाइट जो है ये इनजस्टिस और अनट्रूथ के खिलाफ है, महात्मा गांधी जो है उसने हमको सच बोलना सिखाया और नॉन वायलेंस सिखाई है, तो हम ये आपको कितनी दफा नजर आया है कि इस गवर्नमेंट ने सच बोला है, झूठ ही झूठ बोलते हैं तो हम इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। मोदी जी जो हैं उन्होंने सबका जो है ट्रस्ट ब्रेक किया है और हमेशा झूठ बोलते हैं और प्रोमिसेस झूठे करते हैं। जिस वक्त ये रैली से बात कर रहे थे उस वक्त फॉर्मर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर हैं सत्या पॉल मलिक, वाह क्या बात है, वो भी इनके साथ थे। कांग्रेस जो है वो कंटेस्ट कर रही है 90 असेंबली जो सीट्स में से 89 के ऊपर, और मल्लिक अर्जुन खड़गे साहब ने लाल बहादुर शास्त्री का स्लोगन जो है वो लगाया जिसमें उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा जी बीजेपी को तो जवान और किसान के बारे में पता ही नहीं है, उनको सिर्फ आरएसएस के एजेंडे के बारे में पता है, बीजेपी और आरएसएस में से कोई भी फार्मर्स की लाइन में से नहीं है तो उनको फार्मर्स का पेन कैसे समझ आएगा, उनको सिर्फ एक ही काम आता है अंबानीज और अदानीज को जो है वो हेल्प करना फार्मर्स को नहीं, इनको क्या पता कि एमएसपी गारंटी क्या होती है। मोदी जी ने तो कहा था कि मैं जो है आपको ये सारा कुछ दूंगा, लेकिन इनका काम सिर्फ जो है 16 लाख करोड़ के डेट्स इन्होंने रिच लोगों को माफ कर दिए हैं, तो गरीबों का इनको कैसे ख्याल आएगा। पिछले 10 साल में मोदी जी ने बेशुमार वादे किए हैं और उन्होंने कहा था जी 15 लाख हर किसी के बैंक अकाउंट में गरीब किसान के जाएगा, और हम 2 करोड़ नौकरियां भी यूथ के लिए हर साल देंगे, अभी तक ये प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए। हरियाणा में भी उन्होंने कहा था 5 लाख जॉब्स देंगे और लेकिन अभी तक जो 1.6 लाख वैकेंसीज जो खाली पड़ी हैं उनको तो अभी तक इन्होंने फिल किया नहीं है, तो आगे ये क्या करेंगे। हैं जी आमिर साहब ये है लड़ाइयां और झगड़े। और जनाब आज सल्लू भाई के जो फैंस हैं वो बड़े खुश हो गए हैं क्योंकि साजिद नाडीड वाला जो प्रोड्यूसर है उन्होंने फाइनली कहा है कि सल्लू भाई की किक 2 आ रही है। हैं जी तो उसमें जो आज इन्होंने पोस्टर शेयर किया उसके अंदर सल्लू भाई की बैक नजर आ रही है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने साजिद नाडीटोला ने लिखा इट वॉज ग्रेट किक टू फोटो शूट सिकंदर, यानी क्योंकि आजकल सिकंदर की ये शूटिंग कर रहे हैं ना जलू भाई, तो इसको सिकंदर उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा जी फ्रॉम ग्रैंड साजिद नाडीटोला बींग सलमान खान वड़कन आनंद वाला किक टू, और अपने एक्स और इंस्टा पे जब इन्होंने कहा तो जाहिर है कि जो फैंस हैं वो पागलों की तरह उन्होंने जो है बड़ी खुशी का इजहार किया। और जनाब दुनिया में रिचेस्ट एक्ट्रेस कौन से हैं? आप सोच रहे होंगे शायद शाहरुख खान, टॉम क्रूज और जॉनी डेप एंड ड्वेन जॉनसन, इस तरह के लोग जो हैं रिचेस्ट हैं। नहीं, ये रिचेस्ट नहीं है। टाइलर पेरी इज द रिचेस्ट मेल एक्टर। एक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, प्ले राइट हैं, बिलियनियर हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग एंड फोर्ब्स रिपोर्ट्स He has a worth of 1.4 billion US dollars, जो के 11,500 करोड़ इंडियन रुपीज बनते हैं। इसके अलावा कॉमेडियन जेरी शेनफेल्ड जो हैं, वो सेकंड हैं, उनके पास 1 billion US dollars हैं, यानी के 11,000 करोड़ इंडियन। ड्वेन जॉनसन के पास 890 million US dollars हैं। शाहरुख खान साहब के पास 870 million US dollars हैं। टॉम क्रूज के पास 800 million US dollars हैं। पेरी जो है वो बड़े मशहूर हो गए हैं मेबल मैडिया सिमंस की जो हिट कॉमेडी फ्रेंचाइज मैडिया है उसके अंदर काम करते हैं, और इन्होंने 12 लाइव एक्शन फिल्म्स की हैं, 11 प्लेस की हैं, एंड ही हैज डन अ बंच ऑफ टीवी अपीयरेंसेज, और फिल्म तो एक ही की है लेकिन फिर भी ये बेतहाशा पैसे वाले हैं। ते पायन मतलब है, एक ही हो रहा है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। और जनाब आज जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने कहा है, जो कि को प्रोड्यूसर है कंगना रनावत की मूवी इमरजेंसी के लिए, उन्होंने आज बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि जी उनको जो कट्स बोले थे सेंसर बोर्ड ने करने के लिए वो बिल्कुल उसके ऊपर राजी हो गए हैं। इनके जो सीनियर काउंसिल हैं शरण जगतियानी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी को, उन्होंने कहा जी कि ठीक है ये जो नेसेसरी कट्स हैं ये हम करेंगे और फिर हम मूवी जो है सीबीएफसी को सबमिट करेंगे ताकि हमको सर्टिफिकेट मिल सके। सीनियर काउंसिल अभिनव चंद्रचूड जो है जो कि अपीयर हुए सीबीएफसी की तरफ से, उन्होंने कहा जब हमें कट्स के साथ फिल्म मिलेगी हम उसको वेरीफाई करेंगे फिर हम जो है सर्टिफिकेट इशू करेंगे इन 2 वीक्स। डिवीजन बैंक ऑफ जस्टिसेस कोलाबा वाला एंड फिरदौस पुणे वाला जो है उन्होंने ये सारी चीजें एक्सेप्ट की, उन्होंने पिटीशन को डिस्पोज किया और उन्होंने कहा जी कि इसका डिटेल ऑर्डर हम बाद में देंगे। और जनाब पाकिस्तान के माउंटेनियर शेरबाज खान ने हिस्ट्री क्रिएट की, ही हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू सबमिट ऑल 14 वर्ल्ड 8,000 मीटर पीक्स। आज इन्होंने जो है शिशा पगमा जो है जो 8,027 मीटर्स पीक है तिब्बत में उसको भी सर करके ये यूनिक रिकॉर्ड बनाया है, और इनके पास इतना ऑक्सीजन भी नहीं था। इन्होंने ये जो है हुंजा के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी ये माउंटेनियरिंग शुरू की थी 2017 में और बहुत ही सक्सेसफुली इन्होंने सबमिट किया था नांगा पर्वत जो कि 8,126 मीटर पीक है उस वक्त। उसके बाद इन्होंने सम ऑफ द बिगेस्ट जो हैं समिट्स उनको भी पीक्स में उनको भी सबमिट किया है। इन्होंने कॉन्कर किया था K2 को इन जुलाई 2018 और हॉटसे को इन मे 2019। ये खबर मैंने अब आपको सुनानी नहीं थी क्योंकि इसको इतना स्कैंडलाइज किया गया। आज मैंने आपको बहुत रिकॉर्ड्स बताने थे जो पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम ने कल श्रीलंका के खिलाफ किए, लेकिन ये अब नहीं, चूंकि इसको स्कैंडलाइज इतना किया है ना कि जी आप लड़कियों की खबरें, जितनी लड़कियों की खबरें मैं सुनाती हूं ना एथलीट्स की, कोई भी नहीं सुनाता। बहरहाल अब मैं इसका बस इसका मैं अब आपको सिर्फ मैं टच अपॉन करूंगी, आई विल नॉट गिव यू ऑल द डिटेल्स दैट आई हैड फिगर्ड आउट टुडे। बस पाकिस्तान विमेन्स क्रिकेट टीम 1/31 रन अगेंस्ट श्रीलंका इन द सेकेंड मैच ऑफ विमेन्स T20 वर्ल्ड कप एट शारजा क्रिकेट स्टेडियम। श्रीलंका जो थी उसको टारगेट दिया था 117 का जो वो पूरा नहीं कर सके, सो 85/9 जो था इनको किया गया। इसकी जो बेस्ट जो थी वो थी निलक्षिका सिल्वा जिन्होंने के 22 बनाए 25 बॉल्स पे, विश्मी गुरंतने जो थे उन्होंने 20 बनाए फॉर 34 बॉल्स, पाकिस्तान की सादिया इकबाल जो थी उन्होंने 3 विकेट्स ली एंड शी टॉप द चार्ट। उमायमा सोहेल, नशरा संधू, फातिमा सना इन्होंने दो दो विकेट्स ली और इससे पहले जो था पाकिस्तान ने टॉस विन किया था एंड दे ऑप्टेड टू बैट और मैं आपको अब कोई डिटेल्स नहीं बता रही इसकी। पीसीबी ने आज अनाउंस किया है जी 7 मेंबर स्क्वाड फॉर अपकमिंग हांगकांग वर्ल्ड सिक्सर। ऑलराउंडर फहीम अशरफ जो है इसको लीड करेंगे। 8 टीम टूर्नामेंट जो है वो हो रहा है अब 7 साल के बाद और ये खेला जाएगा बिटवीन नवंबर 1-3 एट कोलून क्रिकेट क्लब इन हांगकांग। ये जो था हांगकांग वर्ल्ड सिक्सेस जो है ये इनके कॉम्पिटिशन्स 1993 में शुरू हुए थे। पाकिस्तान ने अभी तक 4 जीते हैं और 5 में ये रनर्स अप रहे हैं और इन्होंने क्वालिफाई एक दफा किया है लास्ट एडिशन में 2017। इसके अलावा साउथ अफ्रीका यूके जो है वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, उनके पास मोस्ट टाइटल्स हैं, 5-5 बार ये दोनों जीते हैं। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज ने ये टाइटल सिर्फ 1-1 बार जीता है। पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड्स जैसे कि शाहिद अफरीदी, इमरान नजीर, एमएस धोनी ने तो खैर इंडियन है जो है, वसीम अकरम, उमर अकमल, शोएब मलिक ये लोग खेल चुके हैं। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल और सनत जसूरिया भी इसके अंदर खेलते हैं। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट रायन रिकल्टन, 28 ईयर्स की एज है, ट्रिस्टन स्टब्स और इन्होंने बनाए जनाब 50-50 से ज्यादा रन जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने आज बीट किया आयरलैंड को बाय 139 रन इन द फर्स्ट ऑफ 3 ओडीआईज। रिकल्टन जिन्होंने के बैटिंग ओपन की थी जस्ट इन हिज थर्ड अपीयरेंस इन्होंने 91 बनाए ऑफ 102 बॉल्स। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन स्टब्स जो हैं वो भी अपना सिर्फ 5th ओडीआई खेल रहे हैं, उन्होंने भी बनाए 79 ऑफ 86 बॉल्स। साउथ अफ्रीका जो था वो 39 फॉर 3 था जिस वक्त ये दोनों आए एंड दे एडेड 152 रन्स फॉर 4th विकेट। साउथ अफ्रीका में 271 फॉर 9 इन 50 ओवर्स। जो आयरलैंड हैड स्ट्रगल्ड वाज 61 फॉर 5, ओनली 3 आयरिश बैट्समैन कुड पास 20 रन्स। विलियम्स जो है वो भी अपना 5th ओडीआई खेल रहा था, उसने 4 for 32 यानी 4 विकेट्स ली फॉर 32 रन इन 10 ओवर्स। आयरलैंड वाज बोल्ड आउट फॉर 132 फॉर इन 32nd ओवर। ऑलराउंडर जॉर्ज डॉक्टरल जो है वो टॉप स्कोरर रहा इनका जो था आयरलैंड की तरफ से फॉर 21 रन। तो ये थी जनाब हमारी आज की सारी
जी, ये थी गर्मा गर्म खबरें। और T20 वुमेन्स क्रिकेट की जो मैचेस हैं, आज 2 मैच खेलेगा उनकी भी खबर थोड़ी सी शामिल कर लेते हैं क्योंकि लोग स्कैंडलाइज कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज वुमेन्स का और साउथ अफ्रीका वुमेन्स का मैच हुए और इसमें जो है आज साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम्स ने 10 विकेटों से ये मैच जीत लिया। और एक और जबरदस्त मैच जो आज हुआ वो भी वुमेन्स क्रिकेट T20 मैच का था जिसमें न्यूजीलैंड और इंडिया की टीमें जो है आमने सामने थी और न्यूजीलैंड की टीम वुमेन्स टीम जो है वो 58 रन से जो है वो जीत गई। मैंने कहा वीकेंड है तो ये खबरें भी देना आपके लिए लाजिम था। कल भी 2 मैच खेले जाएंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम और श्रीलंका की वुमेन्स टीम खेलेंगी। इसके अलावा बांग्लादेश की टीम वुमेन्स टीम जो है वो इंग्लैंड के साथ खेलेंगे। तो ये थी मुकम्मल खबरें आज की, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और एज यूजुअल अब जो है इजाजत लेने का टाइम आ गया है। शाजा जी इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रहे तो अब मंडे को मुलाकात होगी आपसे।
हाय अल्हम्दुलिल्लाह,
मैं जी सकूंगा।
दो दिन तुम्हारी शक्ल नहीं भूखी बल्कि तुम्हारी नजर नहीं आएगी।
नहीं जी, एंड बेस्ट विशेस फॉर यू वीकेंड, खुश रहें
और प्लीज ये ब्लू जेज ना बन के
आना। मैं वीकेंड पे देखता हूँ कोई ऑरेंज निकालता हूँ,
ऑरेंज
ऑरेंज तो इंशाल्लाह
$20 की टी शर्ट।
और नाजरीन अब इजाजत लेने का टाइम आ गया है। पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, अरफा मुजफ्फर साहबा की तरफ से, माजी जमाल साहब की तरफ से, हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से और मैं आपका होस्ट आमिर अहमद की तरफ से अब इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही तो मंडे आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
मेरी माँ मेरी बेटी। WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world. in words and in music.
लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में टोला पल में वासा कितने रंग बदलती है। कुछ पल खा के कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में टोला पल में वासा कितने रंग बदलती है। जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से, इसके लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल रे की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे।
गाता हूँ गीत जन्मा हूँ सड़कों पे पलता हूँ सड़कों पे जीवन गुजारा। अपनी ही हिम्मत से अपने ही हाथों से अपना मुकद्दर संवारा। जन्मा हूँ सड़कों पे पलता हूँ सड़कों पे जीवन गुजारा। अपनी ही हिम्मत से अपने ही हाथों से अपना मुकद्दर संवारा। I am a street dancer, I am a street dancer, I am a street dancer, I am a street dancer.
लोगों की नींद चुराता हूँ। Whenever I will dance, you can't beat me. Whenever I will sing, you can't beat me. Whenever I will love, you can't beat me. My challenge, challenge, challenge. It's my challenge, challenge, challenge. Whenever I will dance, you can't beat me. Whenever I will sing, you can't beat me. Whenever I will love, you can't beat me. My challenge, challenge, challenge. It's my challenge, challenge, challenge. Yeah! It's my challenge. Yeah!
Thank you. जा जन्नत से दुनिया से क्या लेना मुझको क्या लेना जन्नत से सामने मेरे मेरा दिल जा चाहिए
ए एडी के ईशो